ओम शांति। कल की अव्यक्त मुरली तो सबने सुनी होगी ना। उसमें एक लाइन ऐसे था जिसमें बाबा कह रहे थे कि कभी कभी अगर 9 रत्न में से एक झूठा हो तो पूरे 9 रत्न पर शक आ जाता है। सामने वाले के दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि बाकी के भी सच्चे हैं या झूठे हैं। तो ठीक इसी तरह हम कुछ समय से देख रहे हैं कि जैसे दुनिया की वृत्ति प्रगति होती जा रही है, बहुत साइंस की एडवांसमेंट होती है, नकली चीज भी ऐसे बनाई जा सकती हैं असली ही लगती हैं। इसलिए संशय जैसे एक पूरे मानवता में एक नॉर्मल हो गया है। हर चीज के प्रति हमारी एक शक की दृष्टि, उसका बहुत फैलाव है। और उस शक की दृष्टि को मिटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? असली रियल सैंपल और एग्जांपल बनना होगा। क्योंकि क्लासेस में भी आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन एक होता है क्लास कराना और दूसरा है कि असलियत में आप जिन चीजों पर आप क्लास करा रहे हैं, सच में वो आपके लाइफ में है या नहीं। अगर आपके लाइफ में नहीं है, अगर असलियत नहीं है, तो वो क्लास की बातें आपको अच्छी लगेंगी शायद कुछ समय तक, आपको कुछ प्राप्ति भी होगी, लेकिन उसका छाप रहेगा नहीं। वो टेम्पररी होगा, परमानेंट नहीं होगा। और कुछ हफ्ते पहले भी जयंती बहन ऐसे कुछ सुना रहे थे कि 2 ग्रुप्स हैं जिन्हों को मनाना थोड़ा कठिन है। ज्ञान का, वो ज्ञान स्वीकार करें वो थोड़ा कठिन है। एक तो जो लोग अपने धर्म में पक्के हैं, उनकी मान्यता को बदलना, उनका जो सोच है, उनकी जो बिलीफ्स है, और जो साइंटिस्ट्स हैं उन्हों को कन्विंस करना। ये जो 2 ग्रुप्स हैं, हम उनको बाबा का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? हम उन्हों को वो बाबा का ज्ञान, बाबा की ज्ञान की को स्वीकार कैसे करेंगे? वो हमारे शब्दों से नहीं हो सकता। वो केवल अगर वो हमारे संपर्क में आएंगे और हमारे संपर्क में वो कुछ एहसास करेंगे, उनको कुछ अनुभूति होगी, कुछ साइलेंस की, कुछ अंदरूनी उनको फीलिंग अगर आएगी। इसलिए वर्तमान सेवा एग्जाम्पल बनने में भी है। और आजकल आपने ये भी देखा होगा, सभी ने देखा होगा कि इंटरनेट शॉपिंग, आई डोंट नो देश में कैसे है, लेकिन विदेश में तो बहुत फैला हुआ है। अभी लोग दुकानों में कम जाते हैं, घर बैठे बैठे सब कुछ कंप्यूटर भी पर लेते हैं। भारत में भी ऐसे है क्या? और खास करके कोरोना के समय कोई बाहर नहीं जाना चाहता था, तो और ही लोगों को आदत हो गई है घर में बैठे चीजें खरीदने की। लेकिन अगर हम कुछ चीज स्क्रीन पर से देख कर लेते हैं, तो जब वो चीज घर में आती है, कई बार थोड़ा फर्क होता है। थोड़ा क्या, कई बार तो बहुत फर्क होता है। कंप्यूटर पर तो वो बहुत अच्छी चीज लगती है, लेकिन जब आपके हाथ में आ जाती है बात ही कुछ और है। तो ठीक इसीलिए सैंपल रखे जाते हैं, क्योंकि सैंपल है ना, छोटा अमाउंट होता है, एक टुकड़ा होता है, लेकिन आप उसको हाथ में लेकर महसूस कर सकते हो कि उसकी क्वालिटी क्या है। तो ये भी धोखा कईयों ने इन 2-3 साल में खाया है। चीज बहुत अच्छी लगती है स्क्रीन पर, घर में आती है तो थोड़ा फिर अफसोस होता है, क्या है हमने इस पर पैसा लगाया। रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न करने में भी बहुत फिर सिर कपाई बहुत होती है ना, लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो फिर कहते छोड़ो, ले लिया ना, लेकिन थोड़ा पिंच होता है ना कि पैसे तो गए। ठीक इसीलिए सैंपल्स का होना जरूरी है, और हम सबको बाबा के ज्ञान का सैंपल बनना है। पहले हम सैंपल लेते हैं, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल बनते हैं। और मैं सोच रही थी कि ये सैंपल और एग्जाम्पल हमें किस चीज में विशेष बनना होगा, और उसकी विधि क्या है। और एक शब्द मन में आया, रॉयल्टी। अभी वर्तमान समय पूरे विश्व में वो समाचार फैला हुआ है ना कि रानी ने शरीर छोड़ा है, लंदन की रानी ने शरीर छोड़ा हुआ है। और आप सब ने जरूर कुछ ना कुछ न्यूज क्लिप देखी होगी, न्यूज़पेपर पर देखा होगा, और आपने नोट किया होगा रानी का जो उठने का तरीका, बैठने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, उसमें कितनी सभ्यता है। और उसको अपने आप को वो किस, भले हम लोग किसी ने भी उनको हूबहू नहीं मिले हैं, लेकिन उनकी रॉयल्टी तो उनके व्यवहार से, छोटे से क्लिप से फौरन समझ में आ जाता है ना कि ये किस क्वालिटी की आत्मा थी। भले हम मिले नहीं हैं तो भी हमें विश्वास हो जाता है कि ये हाई क्वालिटी की आत्मा थी, क्योंकि उनमें जो रॉयल्टी है। और फिर हम सोच रहे थे कि हमारे ब्राह्मण लाइफ में हमने रॉयल्टी किस में देखी। और मैं कहूंगी कि दो व्यक्ति हैं जिन्हों से मेरे को रॉयल्टी क्या चीज है उनको देख दीख के हम सीखे हैं। एक तो बड़ी दादी। कौन है यहाँ जो बड़ी दादी से मिले हुए हैं, उन्होंने देखा हुआ है बड़ी दादी को? बहुत कम है। वाह, और जयंती बहन, दोनों से रॉयल्टी क्या चीज है वो हमने उनसे सीखा। तो उसका थोड़ा विस्तार है, एक मिनट के बाद सुनाती हूँ। लेकिन उसके पहले तो जयंती बहन और बड़ी दादी में वो जो रॉयल्टी है, जब हम एग्जाम्पल बनते हैं, उदाहरण, हिंदी में उदाहरण कहते हैं ना, जब हम एग्जाम्पल बनते हैं तो एग्जाम्पल बनने से औरों के लिए इजी हो जाता है, औरों के लिए सहज हो जाता है। क्योंकि कहते हैं कि आंखों देखी चीज भूलती नहीं है, जो हम सुनते हैं भूल भी जाते हैं, अगर मैं आपको पूछूं मुरली में क्या था, वर्ड फॉर वर्ड बताओ, वो थोड़ा शायद याद ना रहे। लेकिन जो चीज हम अपनी आंखों से देखते हैं उसका छाप गहरा होता है। इसलिए एग्जाम्पल अगर हम बनेंगे औरों के लिए इजी, क्योंकि एग्जाम्पल वो देखते हैं आंखों से। एग्जाम्पल बनने से औरों के लिए सहज हो जाता है। और खास बाबा ने कहा हुआ है, अव्यक्त बाप दादा ने, कि जो बाबा के बच्चे बने नहीं हैं उनको हमें दान देना है, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, जो बीके भाई बहन हैं, उनको हमें सहयोग देना है। और सहयोग हम किस चीज का दे सकते हैं? अगर हम बाबा की शिक्षाओं को अमल में लाएंगे, एग्जाम्पल बनेंगे, तो देखने वालों को सहयोग मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, उम्मीद बढ़ेगी। क्योंकि ब्राह्मण लाइफ में ये भी देखा गया है कि दिल शिकस्ती की बीमारी बहुत जल्दी आ जाती है। आप ट्राई करते हो योग में बैठने का, कुछ प्रयोग करने का, अगर उसका रिजल्ट 100% नहीं आए तो हम दिल शिकस्त भी हो जाते हैं या बोर भी हो जाते हैं। बोर पता नहीं हिंदी में बोर किसको कैसे कहते हैं, लेकिन बोर होने की बीमारी बहुत फैलती है और हमारा पुरुषार्थ फिर ढीला बन जाता है। और आप सब भट्ठी में आए हैं, तो भट्ठी में आए हैं मीन्स आप अपने पुरुषार्थ में कुछ तीव्रता चाहते हैं, कुछ न्यूनस, कुछ नवीनता चाहते हैं, राइट? इसीलिए आए हो ना। तो क्या है, अगर हमारे सामने कोई उदाहरण है, जो व्यक्ति हमेशा हम उसमें चेंज देखते हैं, हमेशा हम उनको जब मिलते हैं हम देखते हैं कि उनकी सोच में कुछ नवीनता है, उनकी चलन में कुछ नवीनता है, तो हमें भी अंदर ही अंदर उम्मीद पैदा होता है। और हम कहते हैं अंदर से एक भावना उठती है ऑटोमेटिकली कि अगर ये कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। इसलिए एग्जाम्पल बनने में हमें खुद हमारे लिए एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि औरों की दुआ मिलती है। औरों को के लिए जब हम सहज करके उनको देते हैं तो वो भी थैंक्स करते हैं हमें। और एग्जाम्पल इसलिए क्यों बनना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ज्ञान को रट लिया एक तोते माफिक, अगर हम ज्ञान रोज सुनते हैं लेकिन अमल में नहीं लाते हैं तो एक्चुअली एक खतरा है उसमें। क्योंकि एक्चुअली बाबा की जो साकार मुरली है, अगर हम स्थूल कानों से, स्थूल बुद्धि से सुने तो सेम लगती है, रोज रोज वही बात, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, है ना? गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, बीज और झाड़ सेम ही सेम लगता है। लेकिन अगर, और अगर हम अमल में नहीं लाएंगे ना बाबा के ज्ञान को, तो बाबा की मुरली भी हमें बोरिंग लगेगी। लेकिन अमल में, ज्ञान को अमल लाने में हमारी बुद्धि की क्वालिटी चेंज होती जाती है। जैसे आज बाबा ने शब्द क्या यूज किया, महीन। हमारी बुद्धि महीन और गहरी बनती जाती है। और अगर बुद्धि महीन है, गहरी है, दिव्य है, तो तो वही ज्ञान, वही पॉइंट जो हमने कल सुना, अगर हम शाम को सुनेंगे ना, तो सुनने का तरीका एकदम अलग होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि थोड़ी रिफाइन हो गई है। लेकिन यदि हम सुनेंगे 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 और कुछ करेंगे नहीं, तो एक्चुअली बुद्धि मोटी हो जाती है। अगर बैठे बैठे अगर हम कुछ एक्सरसाइज ना करें, खाते रहें खाते रहें खाते रहें, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? मोटापन। तो बुद्धि भी ब्राह्मणों की कई बार महीन होने के बजाय मोटी हो जाती है। इसलिए एग्जाम्पल बनना जरूरी है। और दूसरी बात, अगर हम सुनेंगे और करेंगे नहीं, तो हमारा विवेक धीरे धीरे वो भी काम करना बंद कर देगा। और विवेक का जागृत रहना ब्राह्मणों के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो एक विवेक में एक सुस्ती आ जाती है, और सुस्ती हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। इसलिए एग्जाम्पल बनना जरूरी है। तो अभी आपको एग्जाम्पल क्यों बनना है, सैंपल क्यों बनना है, वो स्पष्ट हुआ। किस बात में हमें एग्जाम्पल बनना है? रॉयल्टी में। रॉयल्टी को थोड़े शब्दों में, हमारी रॉयल्टी किस चीज से आती है? जितना कुल ऊंचा होगा, उतना उस कुल के लोगों को, सदस्यों को, उनमें रॉयल्टी दिखती है। और जैसे कहा, रॉयल्टी उठने बैठने खाने पीने सब प्रकार की रॉयल्टी। हंसी की एक बात सुनाती हूँ। जो क्वीन है और जो रॉयल फैमिली है यूके के, उन्हों को बचपन से पूरी उन्हों को ट्रेनिंग मिलती है रॉयल्टी क्या चीज है। एक एक चीज, ग्लास कैसे उठाना है। अगर आपने देखा हो, अगर वो चाय पी रहे हैं, तो चाय का हैंडल जो है, चाय का कप का जो हैंडल है, उसको कितनी उंगलियों से पकड़ना है, उंगली की पोजीशन क्या होनी चाहिए, वहां तक उनको सिखाया जाता है। और यहां तक भी, अगर किसी को एग्जाम्पल के तौर से, अगर किसी को क्वीन से मिलना है, उनको चांस मिला है क्वीन से मिलने का, वो टाइम भी फिक्स्ड होता है, 2 मिनट या 3 मिनट वो मिल सकते हैं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर उत्साह में आ जाए और उसको टाइम का पता ना चले, उसके लिए उन्होंने एक विधि रखी है कि जब उनका 2 या 3 मिनट पूरा होगा ना, आपने देखा होगा कि जो क्वीन है जिसने शरीर छोड़ा है, हमेशा उसके हाथ में एक हैंडबैग रहता है। नोट किया होगा, हमेशा हैंडबैग होता है, हैंडबैग के बिना वो नहीं होता है। और उनके हैंडबैग एक ही स्टाइल का होता है, लेकिन अलग अलग रंग का होता है कपड़ों के साथ मैच करने के लिए। लेकिन वो हैंडबैग क्यों रखा है? उसमें ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं, मोस्टली खाली है उनका हैंडबैग। लेकिन हैंडबैग क्यों रखा है? क्योंकि जब वो 2 या 3 मिनट पूरे हो जाए ना, क्वीन इस हाथ से दूसरे हाथ में अपना हैंडबैग शिफ्ट करती है। और ये मिलने वालों को पहले से बताया जाता है कि जब वो अपना चेंज करेंगे ना, तब आपका टाइम ओवर है। लेकिन इसके पीछे क्या है? कि उनको शब्दों में आकर आपको बताना ना चाहिए, बताना ना पड़े, क्योंकि देवता वो जो इशारा से समझे। रॉयल्टी वो है जो हमें खुद अंदर से महसूस हो, सामने वाले को बताना ना ही पड़े। तो देखो कलयुग के अंत तक भी उन्होंने वो सेम मूल्य कहेंगे ना, मूल्य रखे हुए हैं, वैल्यूज। लेकिन इस तरह की हम रॉयल्टी, तो हमारी रॉयल्टी क्या है, हमारे मर्यादों की, और मर्यादाएं हमारी बाबा ने एक एक चीज के लिए दी हुई है। जैसे कल आजकल अव्यक्त इशारों में भी मर्यादा पुरुषोत्तम पर आ रहे हैं ना, तो मोहिनी बहन जो न्यूयॉर्क के मोहिनी बहन है, वो रोज मर्यादा ब्राह्मण मर्यादाएं क्या है उसका विस्तार रोज 5-8 मिनट के लिए सुनाते हैं। कुछ दिन पहले वो सुना रहे थे कि हमें बाबा ने यहां तक भी मर्यादा के बारे में सिखाया है कि यदि आपके हाथ में मुरली है, पेपर की मुरली है, वो मुरली भी हमें भंडारे में नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि मुरली एक इतनी, जैसे शास्त्रों को कितने ध्यान से रखते हैं। गुरुद्वारा में अगर आप जाओ तो शास्त्र को पंखा भी लगाते हैं, इतना महत्व है शास्त्र का। और हमारी मुरली कई बार लोग भंडारे में ले जाते हैं, बीच बीच में थोड़ा सब्जी रखा फायर पर, बीच में हम पढ़ लेंगे 2 लाइन, अच्छी बात है। लेकिन आपकी मुरली पर हल्दी भी आ गई, सब्जी भी आ गई, तेल के छींटे भी आ गए, तो उसको रिस्पेक्ट थोड़ी कहेंगे। भले वो कागज है, लेकिन उस कागज पर कितनी अनमोल मोती हैं। तो ये भी एक मर्यादा है। हमें दादी, हमें याद है एक सीन, एक बार हम दादी के साथ कहीं गए थे किसी सेंटर में, और वहां किसी ने मुरली अपने शूज के पास रखी हुई थी, जूतों के पास रखी हुई थी। वो क्लास में अंदर गए कुछ लेने के लिए और मुरली हाथ में थी, तो उन्होंने वहीं रख दी फर्श पर। दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तुरंत उनको बताया, मुरली को फर्श पर रखा, और वो भी जूतों के पास रखा। ये भी हमारी मर्यादा नहीं है। तो बाबा ने हमको छोटी से बड़ी बात तक मर्यादाओं में सिखाया है। रॉयल्टी की परिभाषा और मर्यादाएं जो है उसको बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए हम सिर्फ 2 बातों पर ध्यान खींचवाना चाहेंगे। बोल और चाल। कुछ ही दिन पहले बड़ी दादी का स्मृति दिवस मनाया, निवय भाई अपना अनुभव बड़ी दादी का सुना रहे थे, और उन्होंने एक लाइन में ऐसे इजहार किया कि बड़ी दादी रिस्पेक्ट, इज्जत लोगों को बहुत देती थी, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जाना पहचाना हो या अननोन हो, सबको सेम और उनके शब्द में, उनके बोल में इतनी इज्जत थी कि सामने वाले को कई बार ये अनुभव होता था कि इतनी इज्जत तो किसी ने मेरी लाइफ में नहीं की है। तो क्या हम इन 2-3 दिनों के लिए, आप लोग 3 दिन के लिए आए हैं ना, तो इन 3 दिनों में हम ऐसा एक दूसरे को अनुभव करा सकते हैं क्या कि हम इतनी इज्जत से एक दूसरे से व्यवहार करें, बात करें कि सामने वाले व्यक्ति को लगे ऐसी इज्जत तो हमें कभी नहीं मिली। ये विशेषता हमने जयंती बहन में भी देखा है, उन्होंने इस बात पर बहुत ध्यान दिया है। और एक बार विदेश में क्या है, एक विदेशियों में एक विशेषता है, वो बहुत ऑनेस्ट है, जो बात जैसे होगी वैसे बोल देंगे। कभी कभी ऐसे भी लगता है कि टू ऑनेस्ट हैं, कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं। तो एक बार किसी ने जयंती बहन से सवाल किया कि कई बार हमें लगता है कि आप बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, बड़े रिस्पेक्ट से, इज्जत से बात कर रहे हैं, लेकिन जो असली बात है ना वो आप हमें बता नहीं रहे। आप सीधा सीधा कुछ भी नहीं बताते, आप बड़े डिप्लोमेसी से बात करेंगे, ढंग से बात करेंगे, और हमें कभी ऐसे लगता है कि आप हमें सच नहीं बता रहे। तो अगर हम आपका उदाहरण लें और आपको फॉलो करें, वो हमारे से नहीं होगा, क्योंकि हम है ना जो दिल में आया सो बोलने वाले हैं, लेकिन आप बहुत पोलाइट हैं। उस समय जयंती बहन ने एक शब्द यूज किया जो मुझे एक्चुअली हिंदी में उसका आता नहीं है, तो बहने जो आगे बैठे हैं मेरे को हेल्प करेंगी। जयंती बहन ने कहा, लेकिन लाइफ में थोड़ा तो रिस्ट्रेंट होना चाहिए। रिस्ट्रेंट मीन्स पारबंदी ना। और आपने ये भी तो सुना होगा कि कहते हैं कि दांत मनुष्य के क्यों बने हैं, ताकि जीभ अंदर रहे, ताकि हम कुछ अनाप शाप बोले नहीं, इसलिए तो दांत दिए गए हैं। तो थोड़ी पारबंदी, थोड़ा बॉर्डर, थोड़ा ब्रेक आ जाए। हमारे बोल में बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए और हमारे चाल में बहुत शांति होनी चाहिए। और एक्चुअली जानकी दादी भी हमें एक शब्द पर हमारा बहुत ध्यान, एक बात पर हमारा बहुत ध्यान खिंचवाते थे। घड़ी घड़ी हम सेंटर की बहनों को वो कहा करते थे, साधारणता नहीं होनी चाहिए, साधारणता नहीं होनी चाहिए। आम लोग जैसे बात करते हैं, जैसे सब करते हैं, हमें वैसे नहीं होना चाहिए। हम देवी कुल के हैं, साधारणता हमारे में नहीं होना चाहिए। भले साधारणता में नुकसान नहीं है, लेकिन फायदा भी तो नहीं है। और अगर हम ऊंच बन रहे हैं तो हमारा सब कुछ हाई क्वालिटी का होना चाहिए। और हम साधारण किस चीज में बन जाते हैं, खास करके अपने बोल में। फैमिलियरिटी भी किस चीज में आते हैं, हमारे बोल में। हमारा एक एक शब्द वाक्य ना हो लेकिन महावाक्य हो, और बोलें भी तो कम बोलें, एक्चुअली ये भी एक जैसे फैलाव हो गया है, आवाज बहुत हो गई है, एक ऐसा ये भी ब्राह्मण एक मर्यादा है, एक रॉयल्टी की निशानी है, कम से कम बोले, हर बात पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। जितना हम आवाज से परे रहेंगे उतना बेहतर है, और खास बट्टे के लिए आए हैं तो हम तो ये राय देंगे, बोलो तो सिर्फ अगर बहुत जरूरी है तो बोलो, और बोलना है तो सिर्फ ज्ञान की रूरिहान, नहीं तो साधारणता बहुत आ गई है। हॉस्पिटल में किस इलाज के लिए गए, डॉक्टर ने क्या बताया, मौसम जहां से आप आए हैं वहां मौसम कैसे है, यहां मौसम कैसे है, इन सब चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने एक किसी के भाषण में सुना, अच्छी लगी हमें बात, उन्होंने कहा कि यदि आपको एक एक शब्द के लिए आपको एक पाउंड देना पड़ता है, एक पाउंड मतलब 100 रुपया, तो आप सोच समझ के बोलते हैं, क्या ये जबान मुफ्त में हम लुटाते हैं, लेकिन कीमत होनी चाहिए। और बाबा भी कैसे बोलते हैं, बाबा का एक एक शब्द में रहस्य, और ना केवल बाबा के बोल में लेकिन बाबा के होठों में उनकी जो मुस्कुराहट है उसमें भी ऐसे लगता है जैसे कुछ राज भरा हुआ है। उनकी मुस्कुराहट भी साधारण नहीं है, बारमुखता की मुस्कुराहट नहीं है, बहुत गहरी मुस्कुराहट है। और वो भी आप देखेंगे हमारे जो बड़े हैं उनकी जो मुस्कुराहट है, पीछे सब वॉल में आप देख सकते हैं हमारे सब पूर्वज बैठकों का चित्र लाइन लगा हुआ है, क्लास पूरा हो तो उनका चेहरा देखना, उनकी मुस्कुराहट देखना, किसी की मुस्कुराहट इतनी इतनी बड़ी वाली कॉलगेट, जिसको विदेश में हम कहते हैं कॉलगेट स्माइल, जिसमें सब दांत दिखाई देते हैं, हमारी स्माइल एक रूहानी मुस्कुराहट हो, योगियों की मुस्कुराहट हो, और चाल चाल में धैर्यता और शांति, ये जो फटाफट हम सब करते हैं ना, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट मैसेजिंग, इसमें भी बहुत नुकसान है। किसी ने हमें आजकल ऐसे लगता है, किसी ने हमें टेक्स्ट किया तो लगता है कि तुरंत हमें जवाब दें, लेकिन उसमें हमारी शान नहीं है। थोड़ा ठहरे, थोड़ा पोज करें, फिर अंदर से आएगा क्या जवाब देना है, बारमुखता से जवाब नहीं देंगे, लेकिन ये फास्ट फास्ट वर्ल्ड, हमारा वर्ल्ड बहुत फास्ट हो गया है, लेकिन हमें स्लो बनना है, शांति से बोलना, शांति से जवाब देना, शांति से काम लेना। कुछ साल पहले, शायद 6-8 साल पहले की बात है, दारी बीच बीच में, दारी जैन की बीच बीच में लंदन आते रहते हैं, तो एक दिन वो अपने कर लंदन आए हुए थे, तो अपने कमरे में बैठे थे। तो वैसे आपको पता होगा शायद कि दारी जैन की जब क्लास कराते थे ना पुराने दिनों में, उनकी क्लास पूरी नहीं होती थी, भंडारे वाले थोड़े उतावले हो जाते थे क्योंकि यहाँ क्लास चल रहा है, वहाँ वो लोग इंतजार कर रहे हैं खाना खिलाने के लिए, लेकिन क्लास का ख़त्म होने का नाम निशान नहीं। उन्हें के पास इतना खजाना और इतना शेयर करना चाहते थे। लेकिन हमने देखा जैसे वर्ष बीतते गए, दादी भी, दादी की क्लासेस भी शॉर्ट कम होती गई। और उस साल खास हमने देखा कि दादी बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहती थी, बहुत ही शांत। और अगर हम लोग कुछ आवाज से बात करते थे उनके सामने, तुरंत हमें कह देते आवाज में मत आओ, हाथ जोड़ती हूं, आवाज में मत आओ। और एक दिन हम उनके कमरे में थे तो शाम का टाइम था, और दादी का जो टाइम टेबल है ना, हमें शुरू से फिक्स्ड रहा है। तो शाम को वो 5 या 5:10 के बीच में उठ के आ जाते हैं अपने दोपहर के विश्राम के बाद, उठकर सिटिंग रूम में आ जाते हैं। फिर करीब 5:15 पर वो कुछ चाय और थोड़ा सा एक बिस्किट लेते हैं या कुछ नाश्ता थोड़ा सा। तो चाय तो उन्होंने तब तक छोड़ दी थी, तो वो हर्ब टी पीते थे। और उस दिन हंसा बेन ने उनको पूछा, दादी आप कौन सा हर्ब टी लेंगे, मीन्स कौन सा फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर होते हैं ना। तो दादी उनके मुंह की तरफ देख रही थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो हंसा ने सोचा कि शायद दादी ने सुना नहीं, दोबारा पूछा, दादी आप हर्ब टी पियेंगे ना। दादी ने ऐसे किया, दादी कौन सा फ्लेवर पियेंगे, कुछ जवाब नहीं। 3-4 बार हंसा बहन ने पूछा दादी को, और फिर वो मामूली सा इम्पेशेंट हो गए हंसा बहन। दादी आप बताते क्यों नहीं। और फिर उस समय दादी ने जवाब दिया, क्या करूं, ख्याल चलता ही नहीं है। मीन्स स्पीड इतनी स्लो डाउन हो गई थी थिंकिंग की, संकल्पों की, कि कुछ अंदर चल नहीं रहा था। इतनी शांति, इतनी स्थिरता। और हमारे मन में क्या स्पीड है संकल्पों की, क्या रफ्तार है, एक संकल्प के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, दौड़ रहा है हमारा मन, चल भी नहीं रहा है, दौड़ रहा है। तो क्या इस भट्टी में हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारी सोचने का रफ्तार इतना धीरे हो जाए, इतना धीमे हो जाए कि अंदर एक स्थिरता आ जाए। क्योंकि एक है याद की यात्रा और दूसरा है योग में बैठना। योग और याद दोनों अलग हैं, सेम चीज नहीं है। योग में हम बैठते हैं, लेकिन याद एक यात्रा है जो चलते फिरते उठते बैठते हैं। और जितना हमारी याद की यात्रा अच्छी होगी, उतना बैठक का योग अच्छा होगा, दोनों का संबंध है। तो जितने भी बातें हमने आपको अब तक सुनाई हैं पिछले 40 मिनट में, वो सब याद की यात्रा की कैटेगरी में आती हैं। याद की यात्रा जो सारे दिन भर हम जो करते हैं, जिस तरह से हम व्यवहार करते हैं, और एक लास्ट बात, जहां तक हमने देखा है, एक संस्कार है जो हम सबको बहुत तंग करता है और जो हम सब में स्वाभाविक है। और दारी ने एक बार कहा था कि ये जो चीज है ना, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली ये चीज है, और वो है परदर्शन। और क्या कह रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, नेचुरल है, हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे साथ बात करेंगे तो हम देखेंगे ना, सुनेंगे ना, लेकिन परदर्शन हो जाता है। और अगर हमें ऐसी स्थिति, रॉयल्टी की स्थिति पानी है, तो स्वदर्शन करना जरूरी है। और स्वदर्शन चक्र धारी बनना, वो भी दो अलग अलग चीजें हैं। कई बार ये देखा गया है कि हम खुद को धोखा देते हैं। औरों की बात तो छोड़ो, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। अपनी असलियत को हम नहीं जानते हैं, या अपनी असलियत को हम अवॉइड करते हैं। कई बार ऐसे होता है कि एक तो मन में क्या चल रहा है और दूसरा चित्त में क्या चल रहा है। आप में से जिन्होंने दारी जानकी की क्लासेस को स्टडी किया होगा, आपने देखा होगा कि उन्होंने चित्त पर बहुत ध्यान खिंचवाया है। चित्त में चैन होगा तो मन शांत होगा। चित्त अगर साफ नहीं होगा, चैन नहीं आएगा, न तन को, न मन को, न शरीर को। चित्त में चैन कब आएगा? और क्या है, हम मन में जो होता है वो मोटा रूप है, लेकिन अंदर चित्त में जो चल रहा होता है वो महीन होता है। उसको देखने में हमें अंतर्मुखता की बहुत सख्त जरूरत होती है। और जब तक हम परदर्शन में रहेंगे, तब तक हम स्वदर्शन और हम अंतर्मुखी नहीं बन पाएंगे। तो अगर हमें परदर्शन छोड़ना है, उसके लिए एक सिंपल एग्जाम्पल है, एक सिंपल विधि है, वो आप एक या दो घंटे के लिए ट्राई करें। और वो ये है कि आप अपने समझें कि आप एक मोबाइल फोन है, और मोबाइल फोन, सबके पास मोबाइल फोन है ना, किसके पास मोबाइल फोन नहीं है? सिर्फ 3 लोगों के पास नहीं है, बाकी सबके पास मोबाइल फोन है। तो मोबाइल में आपने देखा होगा एक वीडियो और कैमरा होता है ना। तो समझो, अगर हम किसी पार्टी में जाते हैं, किसी त्योहार में जाते हैं, और हम देख रहे हैं सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी सीन सामने हैं, सब बहुत खुश हैं, उमंग में हैं, तो हमें लगता है कि हम वीडियो ले लें। उस क्षण उन जो वो मोमेंट्स हैं उनको कैप्चर कर लें, ऐसे होता है ना। लेकिन वीडियो रिकॉर्डर जब आप ऑन करते हैं, वीडियो रिकॉर्डर उमंग में आता है क्या, उछलता है क्या, सामने वाले की खुशी देख के वो खुश होता है क्या, कमेंट देता है, कमेंट्री करता है क्या? बिल्कुल नहीं, एकदम न्यूट्रल। वीडियो रिकॉर्डर सिर्फ जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, हूबहू एग्जैक्टली उसको रिकॉर्ड करता है, लेकिन ना कोई कमेंट, ना कोई भावनाएं, कोई इमोशंस नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं, कुछ जजमेंट नहीं, कुछ उसके ऊपर सोच भी नहीं रहा। न्यूट्रल होके जो बात सामने है रिकॉर्ड कर रहा है, जिसको बाबा की सरल भाषा में हम कहते हैं साक्षी होना, साक्षी होके देखना। तो यदि ये प्रैक्टिस हम एक घंटा के लिए भी करें, सामने वाला जो बोल रहा है हमें उसके बोल के बारे में सोचना नहीं है, हम एक रिकॉर्डर हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एग्जैक्टली रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना कोई अपना ओपिनियन देना है, ना कोई उसके बारे में अपना सोच विचार देना है, सिर्फ रिकॉर्ड करना है। ये आप ट्राई करके देखें तो परदर्शन का संस्कार इस प्रैक्टिस से कम हो जाता है। और ये पहले हम परदर्शन को कम करेंगे, फिर जब हम औरों की आवाज सुनना बंद करेंगे, बाहर हमारे जो हो रहा है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, तभी हम हमारे अंदर रियलिटी में क्या चल रहा है वो देखेगा। अंदर की जो एकदम डीप आवाज है, क्योंकि हमारे मन में दो आवाज चलते हैं, एक बहुत मोटे रूप का जो मन में चलता है, वो दूसरा है चित्त में जो आवाज चल रही होती है। और चित्त वाली आवाज जो होती है विवेक, और विवेक का जो आवाज होता है उसका वॉल्यूम बहुत धीमे होता है, इसलिए कई बार सुनने में नहीं आता। लेकिन हमारी असलियत अगर हमने खुद को रियली देखना है, जब तक चित्त में क्या चल रहा है, विवेक में क्या चल रहा है, जब तक हम वो आवाज हमारे अंतर के कान तक नहीं पहुंचेगी ना, तब तक हमें अपनी स्थिति का असलियत का नहीं पता चलेगा। क्लास में हम आते हैं, मुरली सुनते हैं, नशा चढ़ता है, वो सब ऊपर वाले मन से हो रहा है, लेकिन अंदर जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं आपके जहन में क्या चल रहा है, डीप अंदर क्या चल रहा है, अगर हमें रियली आगे जाना है ज्ञान में, ध्यान में, उस आवाज को सुनना होगा, उस आवाज को जैसे ब्रह्मा बाबा की डायरी का किस्से के बारे में कभी सुनाते हैं ना, कि ब्रह्मा बाबा ने एक बार अपने मन और बुद्धि से जो वार्तालाप हो रहा था उनसे बात की, हे मन तुम मुझे क्यों हैरान कर रहे हो, तुमको तो मेरा कहना मानना चाहिए। तो जब तक हम इस तरह का अंदर का वार्तालाप खुद के साथ नहीं करेंगे, वो अंतर्मुखता नहीं होगी, तब तक हमारे में हम रियल एग्जाम्पल नहीं बन पाएंगे। ओम शांति।